الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا پروگرام سورس اور اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کسی ایک کہانی کے بارے میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم مختلف ایکسپرٹس کی رائے بھی لیتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں جس کے ملٹیپل سورسز آف انکم ہیں یعنی وہ کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے کما رہا ہے اور آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ انسان آن لائن خاص طور پہ ای کامرس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے اور آن لائن کماتا ہے اس کے اوپر شرعی رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے کہ بہت سی ونڈوز ہیں بہت سے اڈے کھلے ہوئے ہیں انسان انٹرنیٹ پر جاتا ہے ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے اور وہاں جا کر پھر کمائی کا کوئی ذریعہ ڈھونڈتا اور پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو جس نوجوان کو آج ہم موضوع بحث لائیں گے جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بھی آن لائن کام کرتا ہے یاد رکھیے یہ ایک ہنر ہے اور انسان کے پاس ہنر ہو تو جتنا وہ وقت دیتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پیسہ اس کے پاس آتا جاتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے ایم بی بی ایس کیا اب ایم بی بی ایس کرنے کے بعد مختلف جابز وہ کر رہے ہیں صبح کے ٹائم ایک سرکاری جاب ہے اس سے تنخواہ آتی ہے اور پھر 2 سے 6 بجے تک ایک اور جاب کرتے ہیں اور پھر رات 7 سے 10 بجے تک ایک تیسری جاب بھی کرتے ہیں اور اگر وہ چوتھی جاب بھی کریں گے تو اس سے بھی ان کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن پھر انسان کے اندر جو توانائی ہے جو سکل ہے اور جو اس کے ذہن کی ریٹینشن ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اسی طریقے سے جو ہمارا سبجیکٹ ہے نوجوان ہے وہ اپنی ریگولر جاب دن کے ٹائم جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے لیکن رات کے وقت وہ زیادہ کمائی کے لیے ایکسٹرا سورس آف انکم کے لیے آن لائن کام بھی کر رہا ہے فری لانسنگ ہے اور مختلف ذریعوں سے مختلف جگہوں پہ جا کے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کما رہا ہے اور چونکہ اس فیلڈ میں عام طور پہ انٹرنیشنل کلائنٹل ہوتا ہے امریکہ سے یو کے سے دیگر جگہوں سے بیٹھ کر ڈیلنگ کی جا رہی ہوتی ہے اور ٹائم زونز میں فرق ہے امریکہ میں 10 بجے ہیں بالفرض تو پاکستان میں 1 بجے ہوں گے اور یوں دن رات اس نوجوان کی مصروفیت وہ جاری ہے ایک دن کیا ہوا وہ نوجوان ساری رات اپنا آن لائن کام کرنے کے بعد جب صبح اپنے ریگولر کام پر گیا بیٹھا تھا اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ گر گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی کانپنے لگا اس کی حالت بہت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس کے ورک پلیس کے لوگوں نے اس کے گھر کال کی اور بلایا گھر والے جب آئے تو اس نے گھر والوں کو دیکھا انہوں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی وہ اول فول بکنے لگا اور اپنے گھر والوں کو پہلی بار پہچان بھی نہ پایا اور اس کے بعد جب وہ حواس میں آیا تو وہ اس بات کو بھول ہی چکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہوا Now this is an incident اور بظاہر یہ ایک دورہ تھا اس کو عام لفظوں میں اگر کہا جائے it was a sudden attack of some medical condition اس کو mental trauma آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا آئیے سب سے پہلے ایک ایکسپرٹ سے سنتے ہیں کہ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا
جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ بیان کی ہے میں اس کی میڈیکل ریزن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ آن لائن ورک کرنے کا جو ہے رجحان ہے اور آن لائن ورک آپ کو پتہ ہے آج کل ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے لوگوں کی سوشو اکنامک صورتحال ایسی ہے کہ پیسہ بہت ضروری ہو گیا اور ہماری جو یوتھ ہے آج کل بہت زیادہ آن لائن کام کر رہی ہے اب آن لائن کام کرنے سے ہوتا کہ ایکچولی کہ زیادہ تر آپ کی جو کلائنٹیج ہوتی ہے وہ کوئی یو کے اندر بیٹھا ہے کوئی یو ایس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ان کے جو ٹائم زون ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے وہاں پر دن ہے تو ہمارے یہاں پر رات ہوتی ہے اس طرح کے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ پوری رات جاگتا ہے اب یہ روٹین کے ساتھ ہم یہ آج کل اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں جس کے اندر نیند کمپرومائز ہونے کی وجہ سے کیونکہ سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے جسمانی بھی اور ذہنی بھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا ہم 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کیا کریں تو جس طرح کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے اسی کی طرح کہ ہم مسلسل روٹین کے ساتھ آج کل تو بہت زیادہ واقعہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی حالت بھی بچوں کی خراب ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے چڑچڑاپن غصہ اور ان کے اندر اس طرح کے نفسیاتی مسئلے مسائل بھی آ رہے ہیں تو ہمارا جو یہاں پر میسج ہے ہماری یوتھ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی آن لائن کام کریں کیونکہ پیسہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے लेकिन इन चीज़ों को बैलेंस करें। आपकी जो नींद है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे तो ही आप काम कर सकते हैं। तो आपका काम करना कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी सेहत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ही सेहतमंद नहीं रहेंगे तो आप अपने काम और दीगर काम है आपके, वो आप रूटीन के साथ नहीं कर पाएंगे। तो हम जो एडवाइस इस चीज़ के अंदर करते हैं वो ये है कि आप रूटीन के साथ रेगुलर एक्सरसाइज आप किया करें, जो हमारी यूथ है, ताकि उनकी नींद बेटर हो। उसके साथ जो आप हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम इस तरफ कह रहे हैं, उसमें अपना जो स्क्रीन टाइम है, जो आप स्क्रीन को टाइम देते हैं, उसको भी कम करें, और कोशिश करें कि अपना जो टाइम है मिनिमम जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी डिमांड है आप उतना करें। और रेगुलर एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ बैलेंस डाइट। आजकल हम लोगों की डाइट भी बहुत मुतासर है, क्योंकि जिस तरह फास्ट लाइफ हो गई है तो खाना पीना लोगों का भी उस तरह ठीक नहीं होता। अक्सर लोग सुबह नाश्ता ही नहीं करते। तो एक बैलेंस डाइट, आपका नींद 6 से 8 घंटे, ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आपकी स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बेटर होगी, और आप अपने जो काम है बल्कि एफिशिएंटली कर सकते हैं। जो बंदा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बेटर होता है, सेहतमंद होता है, वो रूटीन के साथ अपने जो बाकी काम उनको भी अच्छे से निभा सकता है। तो आप लोगों के लिए यही एक मैसेज है कि आप लोग इस चीज़ के अंदर जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, और अपने माशरे को भी इस चीज़ के अंदर देखें कि कोई बंदा अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा। अब इस केस के अंदर जो ये रीज़न आपने बताई कि उसको याद नहीं है, सम टाइम होता है जिसमें हम कहते हैं कि जी इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, इतना उसने काम किया, इतना उसकी नींद डिस्टर्ब है। उस नींद डिस्टर्ब होने की वजह से एक शॉर्ट टर्म मेमोरी सम टाइम लोगों को प्रॉब्लम आता है, कि इतना शिद्दत का स्ट्रेस होता है उसके अंदर, वो जो वाकया है वो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर, वो लोग जो है उस चीज़ को, उनके मेमोरी का इशू आता है, लेकिन वो एक ट्रांजिएंट पीरियड होता है, एक वक्ती तौर पर उनकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है, कोई लॉन्ग टर्म इस चीज़ के अंदर नहीं होती। और अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हों, उनके साथ इस तरह की अलामतें, जो कि याददाश्त उनकी चली जाए, उनके अंदर जो है उल्ट पुल्ट बातें करना शुरू कर दें, तो ये इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। नींद, अब जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक नींद का 6 से 8 घंटे वो रिकमेंड करते हैं कि आप 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें। नींद पूरी करने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं? आपको खाली ज़हनी नफ्सियाती फ़ायदे नहीं होते, उससे आपका जो जिस्मानी फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी री एनर्जाइज होती है, दोबारा से उसके अंदर ताकत आती है। जब नींद पूरी होती है, हमारे जितने सेल्स हैं बॉडी के, दोबारा से उनकी फंक्शनैलिटी जो होती है उसको रीचेक किया जाता है। तो एक ब्रेन जब आपका काम डाउन होता है तो पूरी बॉडी काम होती है। और आपने देखा होगा चंद लोगों का, अगर 2 दिन या 3 दिन नींद पूरी ना हो तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की अलामतें आना शुरू हो जाती हैं।
यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करता चलूँ, बहुत सी तहकीकात जो नींद के बारे में हुई उसमें एक तहकीक ये भी है, स्लीप इज योर ड्रेन, यानी जब इंसान सो जाता है उस वक्त उसके दिमाग का कचरा वो ड्रेन होता है, और अगर इंसान ना सोए, वो स्लीपलेसनेस का शिकार है और सो नहीं रहा, तो अब द ब्रेन विल ड्राउन इन इट्स ओन गार्बेज, इंसान का दिमाग अपने ही पैदा किए हुए कचरे में डूब जाता है। याद रखिए, नींद इंसानी जिंदगी में अहम तरीन है, लेकिन हम जब भी सेक्रीफाइस करने की बात करते हैं, सबसे पहले नींद ही सेक्रीफाइस होती है और नींद को ही छोड़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई 20 लाख का घोड़ा हो, कितना ख्याल रखेंगे उसका आप? उसको हर तरह से खाना खिलाएंगे, उसको आराम में रखेंगे, उसको इतना बोझ भी नहीं लादेंगे क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो आपका जिस्म ये तो कितने कितने करोड़ों करोड़ों का है, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस जिस्म की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखें। एंड रिमेंबर, द कोटा ऑफ स्लीप विच इज फिक्स्ड कैनॉट बी अल्टर्ड एंड कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। और नींद का जो कोटा आपके जिस्म को चाहिए, इसको ना तो मुतबादिल कोई दिया जा सकता है और ना इसका कोई मुतबादिल एग्जिस्ट करता है। ट्राई टू टेक फुल स्लीप, मुकम्मल स्लीप, मुकम्मल नींद जो है, जो आपको चाहिए वो जरूर इख्तियार करें। इट्स एक्चुअली ए चार्जर, जिस तरह आपका मोबाइल, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, आप उसको चार्जर पे लगाते हैं, मोबाइल दोबारा से चार्ज होकर काम करने लगता है। तो ये स्लीप और नींद भी इंसान का चार्जर है। जब आप सो जाते हैं, आपको नए नए ख्याल आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, और अब आप अच्छे अंदाज से चीजों को टैकल कर सकते हैं। एंड ट्राई टू एडजस्ट योर सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? एक तो वो रोशनी है जो कि बाहर हमें मिलती है, सूरज निकला, पूरा सफर तय करने के बाद गुरूब हो गया, चांद बाहर आया, एक आपके अंदर का सूरज होता है, जिसको आप सर्कैडियन रिदम कहते हैं, आपके अंदर का भी एक सिस्टम होता है। कोशिश करें जो फितरती निज़ाम है उसके साथ आपका निज़ाम सिंक्रोनाइज हो जाए। दिन के वक्त आप जागें, रात को सोएं, सारी तहकीकात के मुताबिक रात की नींद का कोई मुतबादिल नहीं है। और ये जो सुबह के वक्त लाइट होती है, अब यूं समझे लाइट ऑन कर दी जाती है, सूरज बाहर आ जाता है, और फिर लाइट ऑफ कर दी जाती है, सूरज डूब जाता है, इसी वक्त आप सो जाएं। रात के वक्त 10 से 11 बजे तक जो नींद है, 11 से 12 बजे तक जो नींद है, दिन के 4-5 घंटे की भी नींद उस एक घंटे को कंपनसेट नहीं कर सकती। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नींद पूरी करें और कोई ऐसा काम ना करें जो हमारी सेहत के अंदर रुकावट बने। याद रखें, ये जिस्म ही तो एक जगह जहां आपने रहना है, और कहां रह सकते हैं। इस जिस्म का ख्याल रखें। जो केस यहां पर हुआ, हो सकता है इस नौजवान को पहले से कोई बीमारी हो और उस बीमारी की वजह से उसे ऐसा हुआ, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त में उसे कोई ऐसा अटैक हुआ हो जिस वजह से उससे ये कंडीशन का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो अलामात इसके जिस्म से जाहिर हुई, जैसे गिर जाना, बेहोश होना, मुंह से झाग निकलना, ये कई किस्म के सीजर्स, एपिलेप्सी की भी अलामत हो सकता है। बहरहाल, ऐसे किसी भी केस में मुस्तनद डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। आइए अब इस केस के बारे में जो वाकया हमने सुना, हम अपने दावत इस्लामी के रूहानी इलाज जो शोबा है उनके इस्लामी भाई के पास चलते हैं और उनसे राय लेते हैं कि वो हमें कौन से वज़ायफ़ और क्या तरीका इरशाद फरमा रहे हैं।
इस स्टोरी के अंदर आपने पूरी ये जो सुनी है उस शख्स के बारे में कि वो दिन भर मेहनत करता रहा, पूरी पूरी रात जागता रहा, और अब जाहिर से बात है जब वो पूरी रात जागा, दिन भर उसने कुछ खाया भी होगा, दौरान काम भी उसने खाया पिया होगा, तो बाद अवत खाने पीने में कुछ ऐसी बेहतियातियाँ हो जाती हैं और हम अतदाल के साथ नहीं चल पाते, तो पेट का निज़ाम इन्हज़ाम ये भी बाद अवत ख़राब हो जाता है। तो पेट और मैदे की ख़राबी की वजह से भी इस तरह की कैफियत का होना मुमकिन है कि मुंह से झाग का निकल आ जाना, बेहोशी का तारी हो जाना, हाथों का मुड़ जाना, सांस का फूल जाना, अच्छा फिर अपना माजी की बातों को भूल जाना, इस तरह की कैफियत का होना मुमकिन है। अब आइए वज़ाइफ़ की तरफ। एक ऐसा वजीफा मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर किसी को नींद ना आती हो तो अब क्या वजीफ़ा किया जाए कि पुरसकून, राहत और सुकून वाली नींद आ जाए। अच्छा, वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा यह है कि सूरतुन्नबा, ये कुरान पाक के 30वें पारे में है, और सूरतुन्नबा की ये आयत मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना नौमकुम सुबाता, ये रात को सोने से पहले अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ ये पढ़ने का मामूल बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल नींद आ जाएगी। अच्छा, अब आइए दूसरे वजीफे की तरफ। इस स्टोरी के अंदर एक और जो मामला सामने आया था वो ये था कि उस शख्स पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई थी। अगर कोई शख्स बेहोश हो चुका हो, किसी पर गुनूदगी तारी हो चुकी हो, अब हमने उसे होश में लाना है, तो होश में लाने के लिए भी आप इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। वो ये आयतुल कुर्सी का ये हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये 3 मरतबा पढ़ें अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। सही, 3 मरतबा पढ़ने के बाद अब आप एक पानी का प्याला ले लें, गिलास ले लें, थोड़ा सा पानी लें और उस पानी पर यह वजीफा पढ़कर आप दम कर दें। अब ये जो दम किया हुआ पानी है ना, ये दम किया हुआ पानी आप अपने चुल्लू में लें थोड़ा सा, यानी हाथ में डालें, और चंद एक कतरे जो है ना उसके चेहरे पर टपकाएं, जो शख्स बेहोश हो चुका है उसके चेहरे पर टपकाएं, और चंद एक कतरे उसकी नाक के नथरों में डालें, चंद एक कतरे उसके हलक में डालें, और थोड़ा सा हिलाएंगे झुलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वो होश में आ जाएगा। अगर तो रोज़ादार है वो, फिर नाक में और उसके हलक में इस पानी के कतरे नहीं डालने, और जब आप पानी लें अपने हाथ के अंदर और उसके चेहरे पर टपकाएं तो इस एहतियात के साथ टपकाना है कि पानी फर्श पर ना गिरे, क्योंकि दम वाला पानी है, इसका भी ख्याल रखना है। अच्छा चलें, लगे हाथों एक और वजीफा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। बाद अवत देखिए दिन भर की मेहनत थकावट की वजह से जो है ना इस तरह की कैफियत हो जाती है कि बंदा बड़ी आसमाइश में आ जाता है। थकन दूर करने का भी वजीफा चले मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, 33 टाइम्स सुबहानअल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। और यह वजीफा हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। अच्छा, इस स्टोरी का एक हिस्सा ये भी था कि जब वो शख्स होश में आया, अपनी उस कैफियत से बाहर निकल आया, तो अब वो भूल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। भूली हुई बातों को याद करने का भी एक वजीफा मैं अर्ज़ करता हूँ, 786 मरतबा, بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس شخص کو پلائیں تو ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر جیسے جنات کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں، کسی پر جنات کی کیفیات ظاہر ہونے لگیں، تو یہ وظیفہ بھی چلو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہنا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ اس پر دم کر دیں، تو اگر اللہ نہ کرے اس پر جنات کے اثرات ظاہر ہوئے ہوں تو الحمدللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے وہ جنات کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے الحمدللہ عزوجل۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔
جی جناب، آپ نے بڑی زبردست رائے سنی، اوراد و وظائف بھی سنے۔ ایک چیز آپ سے عرض کروں، انسومنیا، سلیپ لیسنس، یعنی نیند کا نہ آنا یا سوتے ہوئے ایک دم سے جاگ جانا اور پھر دوبارہ نیند کا نہ آنا، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور بہت بڑی پروپورشن آف ہیومن بینگز دے آر سفرنگ فرام انسومنیا، یہ اس خاص کیفیت کا شکار ہے۔ اور ان حالات کے اندر ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے جناب، اور اگر ڈاکٹرز کہیں تو دوائی بھی کھانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کو نیند آئے۔ بہرحال اگر خود سے اس معاملے کو آپ ٹیکل کر سکیں تو یہ تو دی بیسٹ ہے۔ نیند آ جائے اچھے انداز سے، اس کے مختلف طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رات کو دودھ پی لیں، دودھ کے اندر ٹرپٹوفین ہوتا ہے، ٹرپٹوفین دودھ کے اندر ہوتا ہے، اور دودھ پینے کے بعد انسان کو اچھی نیند آ سکتی ہے۔ غور کریں، چھوٹا بچہ فیڈر منہ میں لیا ہوتا ہے، اس نے پیتے پیتے ہی سو جاتا ہے، یہ دودھ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو رات کے وقت نیند نہیں آ رہی، آپ بستر پر موجود ہیں، تو آپ 20 منٹ سے زیادہ بستر پہ نہ رہیں، بستر سے اٹھ جائیں اور کسی اندھیری جگہ پر آ جائیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ ایسا کام کریں جو بوریت والا ہوتا ہے کہ دوبارہ نیند کی طرف آپ جا سکیں۔ بستر کے ساتھ ایک ایسوسیشن پیدا کریں، ایک تعلق ہونا چاہیے بستر کے ساتھ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے سونا ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کریں، تازہ آکسیجن پھیپھڑوں میں جاتی ہے، انسان اس کو انہیل کرتا ہے، ایکسہیل کرتا ہے، اور یہ پروسیس اس کے جسم کو تھوڑا تھکا دیتا ہے اور اس کو اچھی نیند آ جاتی ہے۔ ٹیمپریچر ریگولیٹ کریں، بہت زیادہ اور بہت کم، دونوں میں نیند اچھی نہیں آتی۔ 18 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ وہ درجہ حرارت ہے جس میں انسان کا جسم آپٹیمل لیول پر آ کے اچھی نیند اس کو مل جاتی ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے تمام سکرینز آف کر دیں، ٹی وی کی ہو، موبائل کی ہو، یا کسی بھی قسم کی سکرین جو لائٹ ایمٹ کرتی ہے، اس کو بند کر دیں۔ اٹ ول انہبٹ یور سلیپ ریسیپٹرز، یہ آپ کی نیند کے عمل میں بہت زیادہ رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر بہت عرصے تک آپ سو نہیں پا رہے اور نہیں سوتے، اس کا علاج کروائیں، یہ بیماری ہے اور بہت سی دیگر بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، حتیٰ کہ فالج اور ہارٹ اٹیک جیسی خطرناک بیماریاں ان لوگوں کو ہو سکتی ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اڈلٹس کے لیے اور بچوں کے لیے ان کے حساب سے سٹیپس بنی ہوئی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کے آخر میں بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، دین اسلام کی روشنی میں جو واقعہ ہم نے سنا، جس میں ایک نوجوان آن لائن کاروبار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ریگولر کام بھی کر رہا ہے، رات رات جاگتا ہے اور بہت زیادہ مصروف ہے، اور اس مصروفیت میں اپنی جو تقاضے ہیں، نیچرل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو وہ قربان کرتا چلا جا رہا ہے۔ کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، سونے کا کوئی وقت نہیں ہے، اور اس حالت میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب اس بارے میں کیا رائے ارشاد فرماتے ہیں۔
یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے، اس میں ایک آن لائن کام کرنے والے نوجوان کا ذکر کیا گیا جو بہت سمجھدار ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن اس واقعے سے بالکل اپوزٹ ایک منظر نظر آ رہا ہے، بالکل الگ ہی، کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بہت ساری غلطیاں ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اس نے رائج کیا ہوا ہے۔ اب چند ایک باتوں کی طرف میں اس واقعے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر، اس میں وقت کی قدر کہیں نظر نہیں آتی، صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام کرنا ہے، یعنی کمائی ہی کرنی ہے۔ یاد رکھیے، وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، कि हर जो हक वाला है उसका हक तुम अदा करो। तो हम पर लाजिम है कि हम पर जो अल्लाह का हक है उसे भी पूरा करें, वक्त पर नमाज पढ़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि हम बीमार ना पड़ जाएं, हम परेशान ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों के मोहताज ना हो जाएं। सेहत अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत, बस औकात ये इंसान को धोखे में डाल देती। याद रखें दुनिया में आने का जो हमारा मकसद है वो क्या है, हमें मकसद तख्लीक को याद रखना है कि रब ने क्यों हमें पैदा किया। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमें पैदा अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए किया है। और ये जो माल कमाना है ये हमारी ज़रूरत है, कनात का लिहाज रखें, माल कमाने में इतना ना खो जाए कि सेहत ख़राब हो जाए और फिर घर वाले परेशान होने लगे। और यहाँ पर आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा, ऑनलाइन बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो नाजायज़ होते हैं, हाँ जायज़ भी होते हैं, तो उलमा से इस हवाले से राबिता किया जाए क्योंकि हम इंसान हैं और अल्लाह की मखलूक हैं और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये मनसब अता फरमाया, एक बहुत प्यारा वस्फ दिया कि हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं। तो उम्मती होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कारोबार से पहले कि मैं जो कारोबार करने जा रहा हूँ वो हलाल है या हराम। हलाल है तो हाथ डालें, अगर हराम है तो बच जाएं, क्योंकि हराम जब इंसान के पेट में जाता है तो इसकी इबादत कबूल नहीं होती। इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिबा, बेशक अल्लाह तबारक व ताला पाक है और वो पाक को ही पसंद करता है। तो हमारे वो नौजवान कि जो ऑनलाइन काम करते हैं या किसी भी काम में डटे रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही काम होता है, बल्कि रात में भी बैठे यही काम करते रहते हैं, उनको अपने एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए, उसके मुताबिक चलेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, घराना खुशहाल रहेगा, घर वाले भी खुश होंगे, इंशाल्लाह इबादत के जरिए अल्लाह को भी राजी कर सकेंगे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक दे।
बड़ी ही प्यारी बात इरशाद फरमाई मुफ्ती साहब ने, और वो है टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग करें हर काम की और प्लान करके टाइम अलॉट करें उस काम को और फिर वो काम मुकम्मल करें। हम अफरातो तफरीद का शिकार हो जाते हैं, जिंदगी में इक्विलिब्रियम और बैलेंस नहीं हो पाता। और दीन इस्लाम की तो खूबसूरती है कि दीन हमें अफरातो तफरीद से बचा के बैलेंस्ड अप्रोच पे रखता है। हाल क्या है, कमा रहे हैं, कमाते ही चले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, बैठे ही हुए हैं, मोबाइल पकड़ा है, छोड़ ही नहीं रहे, बस हर काम जो करते जा रहे हैं उसमें कोई नज्म नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ट्राई टू बी डिसिप्लिन। देखिए वक्त सबसे अहम रिसोर्स है और ये वक्त ही तो हमने गुजारना है इस दुनिया में जो हम आए, किस अंदाज से कौन गुजारता है ये एक आर्ट है। और हम मुसलमान हैं, ऑब्वियसली दीन इस्लाम के तकाजों के मुताबिक इन 24 घंटों को, इसमें आने वाले मिनटों को और सेकंड्स को गुजारने की कोशिश करेंगे। तो टाइम टेबल बना लीजिए, इन 24 घंटों में नमाजें पढ़नी है, खाना खाना है, काम करना है, फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, थोड़ी रिक्रिएशन भी करनी है, इन सारे चीजों को अपने हिसाब से गुजारना है। और याद रखिए आपके जिस्म का जो तकाजा है, जो नेचुरल तकाजे होते हैं वो बहुत जरूरी हैं। नींद पूरी नहीं कर रहे आप, खाना सही नहीं खा रहे, आप बीमार पड़ जाएंगे। और याद रखिए एक बीमार इंसान कभी भी प्रोडक्टिव सिटीजन, प्रोडक्टिव ह्यूमन नहीं बन सकता। अगर वो बाप है लेकिन अगर बीमार है तो क्या होगा, अब उसके बच्चे उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, अखराजात भी बढ़ रहे हैं, और यूं वो एक बेहतरीन बाप बनकर अच्छे तरीके से बाप वाली जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा नहीं पाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, किसी का काम करते हैं और बीमार हैं, छुट्टियां करते रहेंगे, एम्प्लॉयर हैं, बॉस हैं, किसी को गाइड नहीं कर सकेंगे, अच्छे मोहल्लेदार भी नहीं बन सकेंगे, अच्छे शहरी भी नहीं बन सकेंगे। सो योर बॉडी हैज सम राइट, यू मस्ट फॉल इन लव विद यू। आपको अपने आप से प्यार करना होगा, अपने तकाजों को देखना होगा। आमतौर पे एक पार्टनर दूसरे से कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, दूसरा कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ऐसे क्यों नहीं कहते मैं अपना ख्याल इसलिए रखूंगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। खाली कब से चाय तो नहीं गिरेगी, कब भरा होगा तभी चाय मिलेगी ना। तो अपना जरूर ख्याल रखिए, कमाइए, अच्छा कमाइए, हलाल कमाइए, और उससे सबकी मदद भी कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। आपने देखा प्रोग्राम सोर्स मदनी चैनल, देखते रहिए।